نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روح القرآن، آج اس میں ہم پارا نمبر 26 پارا کریں گے، جو سورة الاحقاف سے شروع ہوگا، پوری سورة، پھر سورة محمد، سورة فتح، حجرات، قوف اور زاریات، ان ساری صورتوں کا مجموعہ ہے یہ پارا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہے جس میں مختلف پھول لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان میں سے ایک ایک سے کچھ نہ کچھ لینا ہے. سب سے پہلے سورۃ الاحقاف 35 آیات ہیں، اس میں پہلی چار آیات 1 سے 4 اس کا ٹاپک ہے، کیا شرک کے جرم کا کوئی جواز ہے؟ حقیقت یہ کہ اس دنیا میں اگر ساری دنیا کے ہر طرف کے لوگ شرک کرنے لگے، ہم پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ شرک جائز ہے. ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی ان آیات میں سے سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات سنی ہے وہ توحید اور شرک ہے. اور جب یہ کتابیں غلافوں میں بند ہو جاتی ہیں اور موقع بے موقع کھلتی ہیں، کبھی بیٹیوں کی شادی میں رخصتی کے وقت، کہیں کالوں اقرار لینے دینے کے لیے، یا کسی وزیر اعظم یا صدر کی تقریر سے پہلے اس کی آیات تلاوت کر دی جاتی ہیں، تو جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. توحید اور شرک کا فرق ہی مٹ گیا. بالکل یہی کچھ مکہ والوں کے ساتھ ہو چکا تھا. خود کو مسلمان کہلاتے تھے، حضرت ابراہیم کے ناطے اسماعیل سے نسبت جوڑتے تھے، صلبی اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن عقائد میں جو شرک تھا، اور اگر کوئی ایک دفعہ ان کے سامنے جا کر کہہ کے تو دیکھے کہ تم یہ کام نہیں صحیح کر رہے، یہ شرک ہے، یا تم مشرک ہو، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے بال نوچ لیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تطہیر معاشرہ کروائی، جو صفائی ستھرائی کا کام کرا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جس پہ آپ کا فوکس رہا 13 سال تک، اس میں ایک بنیادی چیز شرک کا خاتمہ تھا. ہم سائیڈ کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، لوگوں کی ان باتوں پہ تنقید کرتے ہیں جو شرک تو چھوڑ دیجئے، نماز روزے کے بھی بہت بعد میں ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن شرک کو ٹچ بھی نہیں کرتے. تو آج یہ نیت کریں کہ ہم نے شرک کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد خود کو اور دوسروں کو بچانا ہے. اس کے بعد حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. بس اتنے حصے میں قرآن کی خوبی، قرآن پاک کو بھیجنے والی ذات کی خوبیاں، مقصد حیات کی خوبی، اواجل مسمہ، قیامت کا قیام، والذین کفروا منذروا موردون، اور کفار کا رویہ. قرآن اتنے خوبصورت طریقے سے بڑی بڑی حقیقتوں کو چند لفظوں میں، جملے نہیں، چند لفظوں میں سمیٹتا ہے، اس کی مثال آیت ہے، اور اس پہ آگے چیلنج کیا گیا. قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے ارایتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یعنی زمین اور آسمان میں کوئی تو ایک دکھا دو کہ جس نے بھی کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ نے پیدا کیا، اور اپنی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہی لے آؤ. تو کیا پتہ چلا کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا العزیز، اور ایک من اللہ العزیز الحکیم کی طرح یہ کتاب بھی غالب ہے. دوسری بات، بندوں کے لیے اس میں کیا ارشاد ہے، کیا بتا دو. نمبر ایک، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے آیات میں غور کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں. پھر اگلی حقیقت اس میں کیا ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری. ہم دنیا میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. نیشنل کمپنی کی کوئی مشین لیں گے تو کیٹلاگ نیشنل کمپنی کی طرف سے ہوگا. تو شیبا کا کوئی اکوپمنٹ لیں گے تو کمپنی تو شیبا کی ہوگی. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو پھر قرآن پاک کی صورت میں بکلیٹ، ریڈ می بیفور یوز، مجھے پڑھیے استعمال کرنے سے پہلے، اور اسی طرح سے یوز می، یہ قرآن ہے. ہمارا حال دیکھیے کہ ابھی وہ بکلیٹ کھولی بھی نہیں اور مشینیں خراب کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते लोग, और मशीन को मिसयूज़ किया। अब ले गए वापस, जी अच्छी नहीं है, ये जल गई, ये ख़राब हुई, क्यों क्या हुआ? कहा घर जाते इसको धोया था, ऐसी पता नहीं किस किस के हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा अच्छा इधर आए, ये देखे बुखलाट के पहले पेज पे लिखा है कि इसको पानी नहीं लगाना। आज हमारा ये हाल है, हमने इस किताब को जो थिंग्स टू या वर्सेस टू एक्ट अपॉन थी, अमल की किताब थी, हमने पढ़ने पढ़ाने की किताब बना दिया। क्यों उतरा ये कुरान? इसलिए कि दौरे कुरान किया जाए, इसको तस्बीह नमाज में पढ़ा जाए, इसको तरावी में पढ़ा जाए, ये साइड की चीज़ें हैं, असल चीज़ है कि इस पे अमल हो। फिर अगली बात क्या पता चली कि इंसान ज़मीन और आसमान दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम उठा रहे हैं। और ये भी पता चला कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए उसको देखें भी। आपने आसमानों से ऊपर की चीज़ें नहीं देखी, लेकिन वो आपकी मावनत कर रही हैं। ज़मीन की तहों में छुपी चीज़ें हमारी मदद कर रही हैं। फिर अगली बात क्या पता चली कि अपने पैदा करने वाले रब को याद रखे, अपने रब की बंदगी करे, और यकीन रखे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह करे कि हमारे दिलों में यह अकीदा रच बस जाए। इसके आगे आयत नंबर 5 से 8 में रोज़े क़यामत मुशरिकीन के माबूदान इनके दुश्मन होंगे, यानी वो माबूद जिनको सारी ज़िंदगी खिलाते पिलाते रहे या उनके नजराने देते रहे, वो सब इनके दुश्मन होंगे। वह इज़ा खुशिरन ना सुकानू लहुम आदाअन, दुश्मन क्यों होंगे? ये उनके ऊपर तकिया लगाए बैठे हैं, वो इनको हवा दे रहे हैं। वह खानू भी इबादतीम काफिरीन, ये भी जुमला देख लें, वो तो इनकी सारी इबादतों का इनकार कर देंगे। तो बताओ ऐसे लोग क्या तुम उनको कुछ सुना सकते हो? नहीं, वो कबूल नहीं करेंगे। क़यामत तक खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। सुनाओ, जैसे किसी ने एक शख्स को देखा जो मजनून था और एक दीवार को बड़े गौर से कान लगाकर सुन रहा है कुछ। दूसरा शख्स उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कई घंटों से इसी तरह से कान दीवार के साथ लगाता है और कुछ सुनता है। जब उसने देख ही लिया काफ़ी देर के बाद, तो उसके पास आया, कहने लगा क्या सुन रहे हो? तो उसने कहा तुम भी सुन लो, आ जाओ। इसने भी थोड़ी देर कान लगाया, कहने लगा मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। कहने लगा मैं सुबह से खड़ा हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं आई, तो तुम्हें भी आ जाए। ये हाल है हमारे शिर्क का, वल्लाही। बहरों को सुनाते हैं, सोए हुओं को सुनाते हैं, मुर्दाओं को सुनाते हैं, और अल हय और अल कय्यूम को नहीं सुनाते। आगे है जी 9-10, नबी सल्लम सच्चे नबी हैं, यानी वो नहीं मानते, ना माने आप सच्चे हैं। कुल मा कुन तो बेदम मिन रसूल, और अल्लाह के नबी के थ्रू खुद कहलाया गया कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना बेदअन, ये वही है जिससे लफ्ज़ बेदत भी है, शुरू करने लगा बदीउ समावात, अल्लाह का नाम भी है। इब्तदा आप कहते हैं उर्दू में, वो भी इसी से है, यानी कोई मैं नया रसूल थोड़ा हूँ, मेरे से पहले भी रसूल आए। वमादरी मा युफ़लु बी वला बिकुम, इसको भी हाईलाइट कर ले, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये मेरी हद से बड़ी भी बात है। क़यामत के बाद किसके साथ क्या होना है, अल्लाह ने इसको छुपा दिया है। मेरा मुकाम क्या है? इन तबी इल्ला मा यूह इलैह, मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ की गई, और मैं तो नहीं हूँ मगर डराने वाला खुल्लम खुल्ला। कितनी क्लैरिटी से नबी अपने बारे में बता रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा में से अक्सरियत का नबी से सल्लम के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ही ठीक नहीं है। इस आयत में इशारे मौजूद है, जाकर देख लीजिए। फिर आगे कुछ बातें और करने के बाद अगली आयत यानी 11 में खुद पसंदी हिदायत की राह में रुकावट है। कैसे? वक़ालज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, कुफार कहते ईमान वालों से अगर होती ये खैर हम तुमसे आगे निकल जाते, यानी लव काना खैरम मा सबकूना इलई, तुम कैसे आगे चले गए? दुनिया में भी तो अल्लाह सारी चीज़ें हमें ही पहले देता है ना, तो इस्लाम भी तो हमें ही देता, और कुरान भी हमें ही देता, ईमान भी हमें ही देता। आज भी दुनिया में आप कुछ लोगों को नाफरमानियों के बावजूद बहुत कुछ रिस्क और शोहरत और फेम मिली हुई है। तो वो कहते हैं अगर ये इस्लाम अच्छा होता ना तो हमारे पास ज़्यादा हक था तुमसे ज़्यादा, तुम क्या बेकार से मुसलमान हो, इस्लाम तो हमारा होता। अल्लाह कहते हैं ये क्या करें, झूठ बोल रहे हैं। कहते थे ये बस झूठी बातें तुम लोग करते हो, सच तो नहीं है। इसलिए आगे आयत नंबर 12 से 14 में असल कीमत इस्तकामत की है। शुरू में किसी काफ़िले का हिस्सा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी बंदे के अंदर एक क्यूरोसिटी भी होती है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, चलो मैं कुछ देखूं, मैं कुछ सीख लूंगी, फिर सीख के मैं खुद ही वो काम करना शुरू कर दूंगी, चले कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है मुझे भी डाल दें, कुछ मीटिंग अटेंड होंगी, कुछ होगा, मुझे पता लग जाएगा। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसके तकाजे पूरे करने पड़े, और ख़ास तौर पर जब पाबंदियाँ लगीं, और ख़ास तौर पर जब आप पे लाइबिलिटीज़ आई और आपसे जवाबदेही होगी, क्योंकि हर नेमत का हिसाब तो होगा, तो फिर लोग ढीले होने लगते हैं। वो शौक़, ज़ौक, कमिटमेंट और दुआएं जो किसी काम के शुरू में होती है ना, अगर वो आखिर तक भी रहे तो इसी का नाम कामयाबी है। यही है कद अफलहल मोमिनून। बीच में जहाँ भी रुक गए वो गए, हंडिया चूल्हे पे चढ़ाने के 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें या आधे घंटे बाद कर दें कि अभी पकी नहीं, दोनों बेकार है, काम नहीं आता वो काम, और ऐसी अधूरी कोशिशें बेकार भी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून एक मिजाज दे दिया, और वो क्या है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेक काम का अजर जन्नत है, और ईमान के बाद इस्तकामत सबसे अच्छा अमल है, इसके बगैर काम नहीं बनता, लगे रहो लगे रहो। और अल्लाह के नबी ने क्या कि अल्लाह ताला की पसंद के कामों में कहे, इन्ना अहब्बल आमाली इलल्लाही अदवमुहा वइन कल्ला। अदवमु वही लफ्ज़ है जिसे आप उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं दवाम, हमेश की, मा दामत समावात वल अर्द कुरान में आता है, पाकिस्तान कायम दायम वही लफ्ज़ है दायम। यदि मुस्तकिल करो चाहे वो छोटा सा ही काम हो, कल्ला कलील से है। फिर आके आयत 15-16 में अल्लाह ताला का बंदों के लिए अजीम तोहफा, एक ईमान अफरोज़ दुआ। अगर चाहते हैं कि हम दुआएं लें या दुआएं दें, तो इस हिस्से में वो दुआ है जिसको 40 साल की उम्र के करीब होने पे तो मस्ट पढ़ना भी और याद भी करना है। वबसईना लिंसान अबी वालिदैही एहसाना, हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालदैन के साथ एहसान करो। उसकी माँ ने उसको उठाया दुख पे दुख झीलते हुए, फिर उसको जन्म दिया तकलीफ़ के साथ, फिर उसका उठाना और दूध पिलवाना 30 महीने का था, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँच गया और फिर 40 साल का हो गया तो कहने लगा, यहाँ से आगे दुआ के लफ्ज़ हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं, काला रब्बी औज़ेनिया नशकुरा नेमतक अल्लती अनमत अलैया, ऐ मेरे रब मुझे इस बात की तौफीक दे, मुझे बांध के रख कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पे की और मेरे वालदैन पे की। वला वालिदैया वनामला सालेहन तरदाहू, और मुझे उन कामों के करने की तौफीक दे जिनसे तू राज़ी हो। वसलिख ली फी ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद की भी इसलाह कर दे। इन्नी तुबतु इलैक, मैं आपकी तरफ तौबा करता हूँ या करती हूँ। वइन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। आगे अल्लाह ने इस दुआ के असरात बता दिए कि यही हैं वो लोग जिनकी हम कबूल करते हैं। अहसन मामिलो, वही बात, अपग्रेड करके इनकी नमाजों को, इनके रोज़ों को दी बेस्ट वाले पे सबको आगे कर देते हैं। वरना तजावज़ उन सय्यातिहिम, और हम ओवरलुक करते हैं, हम बिल्कुल देखते भी नहीं उनकी उन बुराइयों को जो उन्होंने की, और उनको जन्नती बना देते हैं। जो वादा सच्चा है, जो किया जाता है, क्या पता चला कि नेक औलाद 40 साल की उम्र को पहुँच कर वालदैन की कदर को महसूस करना शुरू कर देती है, फिर उनके लिए दुआएं करती है, और ये दुआ अपने अंदर दो नस्लों को लिए बैठी है। आप देखेंगे ना, अगर माँ बाप के लिए भी दुआ की है और औलाद की इसलाह की भी, क्योंकि अमूमन इस उम्र में इंसान औलाद तो होता ही है, माँ या बाप भी बन चुका होता है। यहाँ वालदैन के साथ एहसान की बात की गई, तो वालदैन के एहसान का बदला हम कैसे दें? ज़ाहिर है वो तो अब छोटे नहीं हैं कि हम उनको भी वही पाल पोस लें या उनको पैदा करें या वो करें जो उन्होंने मरसद किया, तो हम क्या करें? इताअत और फरमाबरदारी, ताज़ीम और तौक़ीर, और ये दो तरह से होती है, कौल से भी फेल से भी। यानी कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, उनको इज़्ज़त देने वाले जुमले बोलिए और उनके काम भी कीजिए। फिर खिदमत, ये भी माली भी और बदनी भी है। करीब हैं आप, उनके पास हैं, तो उनकी ज़ाती तौर पे खिदमत करें, उठाएं बिठाएं रखें, जो भी उनको आपसे एक्सपेक्ट है वो कर दें, और दूर हैं तो माल लगा दीजिए। उनकी ज़रूरत की चीज़ों को, इस्तेमाल करने की चीज़ों को उनके अवेलेबल कर दे। एक वीडियो किसी ने भेजी जिसमें शायद टर्की का कोई बेटा था, खुद भी बड़ी उम्र का ही लग रहा था, तो उसकी जो माँ थी या बाप था कोई बूढ़ा सा शख्स था, तो वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाह रहा था और खड़े होकर पढ़ना चाह रहा था, और बिल्कुल वो महीन सा कमज़ोर सा इंसान था। बेटा क्या कह रहा है, बाप सबके साथ सफ में खड़ा है ना, तो ये अपने बाप के पीछे खड़ा हो गया ना, तो उसको पीछे से ज़रा से ऐसे कमर से पकड़ के रखता है खड़े होते में, फिर वो रुकू में जाता है ना, तो ये इसको इस तरह से रुख में करके ना अपने हाथ पे रुकू कराता है, फिर वो खड़ा होके जब दोबारा सजदे में जाता है तो ये पीछे खड़ा होके देख रहा है, और जब सजदे से उठना है तो फिर उसको आराम से उठा, यानी वो अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सक रहा था। रब इरहम हुमा कमा रबयानी सगीरा। फिर एक और तरीका उनको खुश करने का, दुआ करें और तारीफ़ करें, उनकी मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी, उनकी अच्छी बातों को प्रेफर कीजिए, उनकी तारीफ़ें कर दें और उनके लिए दुआएं तो बेहतरीन, ये भी दुआ है, और रब्बे रहम हुमा वाली भी पढ़ चुके सूरह बनी इसराइल में। फिर इसी तरह वालदैन के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक कीजिए, ख़ास तौर पे उनके दुनिया से जाने के बाद, आपके भी वो रिश्तेदार हैं लेकिन उनके रिश्तेदार समझ कर मिलिए, ये भी एक अजर की बात है। फिर इसी तरह से एक और एहसान क्या है कि मसरूफियत की वजह से वालदैन को नज़रअंदाज ना कीजिए, बच्चे बड़े मसरूफ़ हो जाते हैं ना आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें टाइम नहीं, तो माँ बाप भी आपके काम का प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, ये नहीं कि जब वो फारिग मिल गए तो उनको देखे हेलो हाय चाचा मैं जा रहा हूँ अच्छा मैं भी आती हूँ, ऐसे नहीं करें, जिस हद तक मुमकिन हो कमिटमेंट्स को लेकर साथ चलिए, फिर वालदैन से जो नेकी है ना वो जन्नत में ले जाने का बायस होती है, तो आपकी हो सकता है ये नेकी आपको जन्नत में ले जाए बाकी नेकियों से पहले। फिर एक और एहसान की सूरत क्या है कि खर्च की इब्तिदा वालदैन से की जाए, महीने की तनख्वाह मिलती है, पहली चीज़ उन पैसों से वालदैन के लिए ले लीजिए, पैसों से ज़्यादा उनको इस उम्र में चीज़ों की और आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है वो कीजिए, और याद रखिए कि वालदैन की नेकी का असर औलाद तक जाता है। तफसीर सादी के पेज 781 में आता है कि वालदैन पर जो इनामात होते हैं ना वो इनकी औलाद और बच्चों पर भी होते हैं, क्योंकि इनको भी इन नेमतों में से कुछ ना कुछ ज़रूर हिस्सा मिलता है या इनके आसार ज़रूर पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर दीन की नेमत, क्योंकि वालदैन का इल्म और अमल के ज़रिए नेक होना इनकी औलाद के नेक होने के बड़े असबाब में से है। और सूरह कहफ की आयत में हम ये बात पीछे थोड़ी सी समझ कर भी आए थे के वकान अबू हुमा सालेहा, चूँकि उनके माँ बाप नेक थे तो अल्लाह ने बाद में बच्चों की यानी उन यतीम बच्चों के माल की और उनकी हिफाजत की। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जन्नत का ये दरवाज़ा खुला रहे और हम उससे दाखिल होने की पूरी तैयारी भी करके बैठे। इसके बाद है जी 17 से 19, बुरा किरदार और इसका बुरा अंजाम। पहले वाले किरदार का बिल्कुल अपोजिट, वो तो 40 साल में भी माँ बाप के आगे बिछा बिछा जा रहा है, और वहाँ मैंने एक किस्सा भी दूसरे दौरे कुरान में भी सुनाया था कि अरब मुल्कों में एक मुल्क में एक बड़ा अनोखा मुकदमा दायर हुआ, और वो मुकदमा क्या था, एक भाई ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा किया, और वो क्या था कि माँ को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो ये भाई कहता है कि मुझे रखना है। कहानी सारी खुली कि उस माँ के ये दो बेटे थे और माँ 90-100 के करीब, और ये बेटा जो मुकदमा कर रहा है ये 70 से ऊपर का था, छोटा भाई से ज़रा कम था, तो सारी जिंदगी इस बड़े ने माँ को अपने पास रखा, तो अब इससे भी नहीं रखा जाता था क्योंकि ये खुद बीमार था। छोटा भाई कहने लगा कि मुझे दे दो, अम्मा अब मेरे साथ रहेगी, इसने उस पर मुकदमा कर दिया। कभी ऐसा मुकदमा हमारे मुल्कों में भी हुआ इल्ला माशाल्लाह। आप सोचेंगे कि फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ कि दोनों ने अपने अपने दलाइल दिए, तो आखिर फिर जज ने कहा कि बड़े ने बहुत साल खिदमत कर ली, अब छोटे को दे दो, उसको भी मौका है। तो बात यह कि जब बच्चों की अच्छी तरबियत की जाती है ना तो वो होता है, और ना की जाए तो अल्लाह रहम करे ये होगा अगले दौर में, आज भी हो रहा है, वो औलादे जिनको हमने अल्लाह से जोड़ा वो हमसे भी जुड़ गई, और जिनको कटी पतंगों की तरह बाहर दुनिया की दौड़ धूप में आगे बढ़ने के लिए छोड़ा और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में भेज दिया, फिर वो हमसे भी कट गई, आज हमारी औलादें कटी पतंग की तरह इधर से उधर फिर रही हैं, नानी दादी और उससे भी को बड़ा, बस ये आपकी बड़ों की जिम्मेदारी है, बच्चों को तो उनसे कुछ लेना देना नहीं। पहले दौर में बच्चों से खिदमत कराई जाती थी, आज वो बेचारे खुद खिदमत कराते हैं।